नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार।
और मैं हूं विनीता।
आज हम आपके समक्ष 1 से 15 दिसंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि भारत का रक्षा क्षेत्र ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। आज भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रक्षा निर्यात जो 2014 में 1,000 करोड़ रुपए का था, वो आज 21,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया है। आज भारत में स्वदेशी युद्धपोत जल क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, मेड इन इंडिया मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रही है, स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे सैनिकों की रक्षा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 आधुनिक रक्षा गलियारे रणनीतिक बुनियादी ढांचे के प्रतिमान बन रहे हैं। आत्मनिर्भरता के इस युग में ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। एक समय था जब रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा विदेशों से हथियार और उपकरण आयात करने में खर्च होता था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। आजादी से पहले भी भारत का रक्षा क्षेत्र बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन बाद के दशकों में उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब बीते एक दशक में 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है, ताकि हमारी सेना विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ी हो। समाज ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल का ही नतीजा है कि आज देश की जमीनी सीमा हो या समुद्री सीमा या फिर वायु सीमा, न केवल सुरक्षित है बल्कि गलत निगाह उठाने वालों को पुरजोर जवाब देने में सक्षम है। इस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम वृतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टु नैव च नैव च।
अर्थात राष्ट्र की रक्षा से बड़ा न कोई पुण्य है और न कोई व्रत है और न ही कोई यज्ञ है। 7 पड़ोसी देशों से जुड़ी 15,000 किलोमीटर से लंबी थल सीमा और 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि की नीति आज रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। निर्यात में नए रिकॉर्ड और स्वदेशीकरण की नीति के साथ मोदी सरकार ने बीते 10 वर्ष में सीमा पर बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो अब नए लड़ाकू विमान और नए इनोवेशन तकनीक शोध के साथ सैन्य बेड़े की शक्ति बढ़ी है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक या लद्दाख में गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के उल्लंघन का प्रयास या फिर नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश या फिर अन्य सीमाओं पर अतिक्रमण के प्रयास, भारतीय सेना हर कुत्सित प्रयास का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है बल्कि अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत ने दुनिया को 2 टूक संदेश दे दिया है कि आज किसी में भी इतना साहस नहीं कि उसकी 1 इंच जमीन पर आंख उठाकर भी देख सके। आज जब 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहे हैं, ऐसे में तीनों सेना के सशक्तिकरण की पहल, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भारतीय सेना एवं अपनी सरजमी को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करना सशक्त राष्ट्र समर्थ सेना का परिचायक बन चुकी है।
ये भारतीय सेना के समर्थ होने वाली उस नए भारत की तस्वीर है जो 1962 की मानसिकता से कोसों आगे निकलकर दुनिया को ये साबित कर चुका है कि शांति की हमारी प्रतिबद्धता को कमजोरी न समझा जाए। विस्तारवाद का युग समाप्त होने और विकासवाद की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के साथ संवाद में कहा भी था, आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेक आक्रांताओं के हमले और अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वही सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। भारतीय सेनाओं की अन्य दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर विमान, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी जोर दिया गया है। नई तकनीकी और शोध ने सीमावर्ती क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सशक्त व सक्षम बना दिया है कि दुश्मनों की हर नापाक गतिविधि की जानकारी समय रहते सेना को मिल जाती है, जिसका पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। नए भारत की इस तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में देश में बम ब्लास्ट जैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।
ऐसे में ये समझना जरूरी है कि नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अन्य सीमाओं पर भारत की थल, जल और वायु सेना के जाबाज मुस्तैदी के साथ देश की हर हरकत का माकूल जवाब देने में तत्पर है। इसकी बड़ी वजह सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास है, जिसके लिए 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पर्यावरण की मंजूरी का मामला हो या फिर फंड, सारी बाधाओं को दूर कर सैन्य शक्ति को समर्थ और सक्षम बनाया गया। वहीं वन रैंक वन पेंशन और सैनिक कल्याण के तहत ऐसे कई अहम फैसले किए गए जो आत्मबल को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। रक्षा बलों के लिए साजो सामान की जरूरत पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक समय था जब रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा विदेशों से हथियार उपकरण आयात करने में खर्च होता था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचनाओं की अधिसूचना भी शामिल है। इसमें 5,600 से अधिक आइटम है जिन्हें निर्धारित समय सीमा के बाद केवल भारतीय उद्योग से ही खरीदा जा रहा है। भारत, जो कभी रक्षा उपकरणों के आयात पर पूरी तरह निर्भर था, आज कई देशों को निर्यात कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं।
ये महत्वपूर्ण है कि सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। उसी वित्तीय वर्ष में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। ये वित्त वर्ष 2022-23 के तुलना में 32.5% की वृद्धि है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात में भारी उछाल आया है। पहली तिमाही में 6,915 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के 3,885 करोड़ रुपए से 78% अधिक था। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं जिससे भारत में एक वाइब्रेंट रक्षा उद्योग का विकास हुआ। केंद्र सरकार ने इसी सोच के साथ रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विस्तार दिया और सार्वजनिक क्षेत्र को कुशल बनाया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस जैसी योजनाओं ने स्टार्टअप को गति दी। बीते 5-6 साल में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। श्रोताओं, अपनी आवरण कथा पर अपनी इस चर्चा को हम अगले सप्ताह 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जारी रखेंगे। अभी बात करते हैं सक्षम राष्ट्र की कड़ी, सशक्त होते दिव्यांगजनों की।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात विश्व में समाज का हर वर्ग, हर नागरिक, हर समाज सुखी हो। इसी सोच से वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व में बीते एक दशक में हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से सशक्त किया है। कभी लाचार समझी जाने वाली करीब 3 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए आह्वान से, नए सिरे से परिभाषित किया गया और एक दशक पहले किया गया उनका आह्वान सामाजिक सोच में बदलाव का वाहक बना। 3 दिसंबर को सुगम्य भारत अभियान की 9वीं वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आइए जानते हैं दिव्यांगजन किस तरह सशक्त हो रहे हैं और सक्षम राष्ट्र की मजबूत कड़ी बन रहे हैं। अब विकलांग नहीं दिव्यांग कहिए। बीते एक दशक में केंद्र सरकार की पहल ने दिव्यांगजनों को एक गरिमामयी जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध कराया है, जो दिव्य शक्ति से लैस दिव्यांगजन भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज दिव्यांगजनों के लिए अवसर और सुगमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सहज और सरल वातावरण दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराने के लिए 3 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की, तो 2016 में संसद से पारित हुआ दिव्यांगता अधिकार विधेयक दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भर जीवन का आधार बन गया है। इसके बाद दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 लागू की गई, जिसमें दिव्यांगजनों को सम्मान एवं समान अवसर के साथ सक्षम और सशक्त बनाने के उपाय उसमें जोड़े गए। फिर शिक्षा में दिव्यांग छात्रों को समान अवसर के साथ आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उपाय किए जाने से पूर्व भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना शुरू की। इसमें दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा मुक्त आवागमन की सुविधाएं दी गई, तो वहीं 10 जनवरी 2024 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता संहिता अधिसूचित की गई। केंद्र सरकार की सोच दिव्यांगों को न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुविधाएं बल्कि समान अवसर उपलब्ध कराना भी है।
पैरालंपिक 2024 में 7 स्वर्ण सहित 29 पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। इन सब के पीछे दिव्यांगों को सहज और सरल वातावरण उपलब्ध कराने वाले सुगम्य भारत अभियान और फिर विकलांग की जगह दिव्यांग के संबोधन से आत्मविश्वास बढ़ा है। दिव्यांगों के लिए सृजित लगभग 15,000 पद जो लंबे समय से खाली थे, सरकार द्वारा एक विशेष अभियान के तहत भरे गए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान बताता है कि पूरे विश्व में 1 अरब से भी अधिक दिव्यांगजन हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व में हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी तरह की दिव्यांगता में है। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना रखने वाले सरकार ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है कि दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार, खेल सहित हर क्षेत्र में समानता के साथ आगे बढ़ने के अवसर बनाए जाएं। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता, नए अवसर, उनके प्रति राष्ट्र के भाव, बढ़ते अधिकार, बढ़ती क्षमता के साथ समर्पित विभाग और पहल की स्थापना समाज के अंदर समावेशिता, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये प्रयास न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, एक अधिक समावेशी समाज तैयार करते हैं जहां हर कोई आगे बढ़ सके।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा को हम अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति www.newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB India है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।